जय धवला, पुस्तक चौदवी, लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसानं। उवसमित सयल दोषे उवसंतक साय वीरायन्ते, उवसामहे पणनियुं कसाय उवसामणं होषम। यह श्री वीरसेन आचार्य ऋषि जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश्व आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चौदहवीं पुस्तक में अभी हम वही चारित्र मुनि की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 40। देखो यहाँ 39 पृष्ठ पर सूत्र आया था कि कितने काल तक कौन प्रकृति उपशमाई जाती है। पहले चौथा सूत्र पहले उन्होंने बताया, उसमें कौन कौन से करण विच्छिन्न होते हैं और अविच्छिन्न रहते हैं, उसके बाद कौन कौन से करण उपशांत होते हैं और अनुपशांत रहते हैं, दोनों का अर्थ सेम ही होता है, उसकी चर्चा हमने विस्तार से की। जो 8 करणों की याद है ना, 8 करण। हाँ बोलो। अप्रशस्त उपशामना, निकाचना, हाँ बंद,
संकल्प,
हाँ ये 8 करण है। तो उसमें से ये अप्रशस्त उपशामना, निदत्य और निकाचना अनिवृत्तिकरण के पहले समय से नहीं रहे, अपूर्व करण तक ही है, बाद में नहीं, ये बात हमने देखी थी। और अन्य अन्य कर्मों की कहाँ कहाँ होती है उसकी भी चर्चा की। कल मैं वैसे वो अपना कर्मकांड पढ़ रही थी, उसमें भी ये करणों की बात आई थी। हाँ बहुत ही शॉर्ट में दी थी ये, जैसे हमने पेज निकालना 34, आयु के बारे में जो बताया ना, नरकायु का बंध करण, उत्कर्षण करण, मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में होते हैं और उसका सत्व है चौथे तक, इसलिए वहां तक उसका निकाचना निदत्य वगैरह है। पर देवायु के बारे में क्या लिखा था, देवायु का सत्व तो 11वें तक है, कहाँ गया देवायु का,
35 पे ऊपर की लाइन में,
35 में है देवायु के। हाँ बंध तो अप्रमत्त तक है, हाँ जहाँ तक बंद है वहीं तक उत्कर्षण होता है, यहाँ संक्रमण का सवाल नहीं है। आयु में 9 करण होते हैं, 9 यानी यहाँ पर अभी हम 8 में से 7 कहेंगे, जब 10 की बात आती है तब 9 कहेंगे। सत्व और उदय को मिलाकर हम 10 करण कहते हैं और उनको गौण करके 8 करण कहते हैं। 8 में से इन आयु के साथ ही हो गए, संक्रमण करण आयु में नहीं होता। उदय उदीर्ण असंयत तक है, अपकर्षण और सत्व उपशांत कषाय तक है, और उपशामना करण निकाचना निदत्य, अच्छा वो भी अपूर्व करण के गुण स्थान तक बताए, ठीक है। जहां तक उसका सभी कर्मों में अपूर्व करण तक जो बताया था वो देवायु में भी घटित होता है, क्योंकि देवायु और मनुष्यायु का तो सत्व है ऊपर के गुण स्थान में, नरकायु का चौथे तक है, वीर्यंचायु का 5वें तक है। अब हम आते हैं 40 पृष्ठ पर। 39 प्रश्न पर पूछा गया था कि कितने काल तक कौन सी प्रकृति उपशमाई जाती है, संक्रम उत्तीर्ण कितने काल तक होता है वगैरह वगैरह। अब यहाँ नीचे की लाइन 40 पृष्ठ पर, यहाँ पर प्रकृत अर्थ की गवेषणा करने पर मूल प्रकृतियों के भंग के अनुसार सभी कर्मों के करणों का विच्छेद और अविच्छेद जानना चाहिए। अब ये बताएंगे प्रत्येक मूल प्रकृति के अनुसार उसके जो उत्तर प्रकृतियों में जो कुछ बनते हैं उसकी बात बताएंगे। यथा नपुसक वेद के तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी वही प्रशस्त करणोपशामना है, क्योंकि अप्रशस्त भाव से अनुपशांत हुए उनकी उपशांत हुए नहीं अप्रशस्त भाव से अनुपशांत हुए उनकी प्रशस्त भाव से उपशांत भाव की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। इसका अर्थ ऐसा है अपूर्वकरण के अंत तक अप्रशस्त उपशामना है, अप्रशस्त उपशामना मिट गई परंतु प्रशस्त उपशामना तो होगी, तभी तो उपशम श्रेणी बन सकेगी। सभी कर्मों की अप्रशस्त उपशामना मिट जाती है, यदि केवल उपशामना मिट जाती है कहेंगे तो प्रशस्त उपशम होगा ही नहीं चार कर्मों में, क्योंकि प्रशस्त उपशामना नवे गुणस्थान से शुरू हो जाती है, नवे गुणस्थान का संख्यात बहुधा मिट जाता है। ये वाक्य फिर पढ़ेंगे के नपुसक वेद के तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करण, यानी अप्रशस्त उपशामना निधत्ति निकाचना ये तीन करण नष्ट हो जाते हैं। करण नष्ट होना यानी पहले जो अपकर्षण जो संक्रमण आदि नहीं हो रहे थे अभी होंगे, इसलिए उनकी वही प्रशस्त करणोपशामना है। अप्रशस्त उपशामना नष्ट होना ही प्रशस्त उपशामना ही कहते हैं, क्योंकि अप्रशस्त भाव से अनुपशांत हो गए। पहले अप्रशस्त उपशामना चल रही थी, अब अप्रशस्त अनुपशामना हो गई, अनुपशांत हो गए, उनकी प्रशस्त भाव से उपशांत भाव की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। अप्रशस्त भाव से उपशांत हुए वही उसी कारते प्रशस्त भाव से उपशांत हो गए, अप्रशस्त से अनुपशांत, प्रशस्त से उपशांत।
ये तो पुरुषवेद की और तो पुरुषवेद के उदय से करने वाले की बात है, अभी नपुसक वेद से उदय करे उदय के साथ चलेगा तो उसमें उपशामना ही मिल जाएगी सर नहीं,
उसमें भी घटित होगा ना किसी भी उदय से चढ़े हाँ। उसमें ये तीन करण तो नष्ट हो जाएगी एक बार
अप्रशस्त उपशम नष्ट हो गया, अभी उसके उदय के साथ चढ़ा है सभी
तो उसकी भी उपशम तो होगा कि नहीं होगा, द्वितीय स्थिति के सारे ही प्रकृतियों का उपशम तो होगा। प्रशस्त उपशम यानी अंतरकरण रूप जो प्रशस्त उपशम कहते हैं वो तो होगा ही सभी में होगा,
अंतरकरण का भी होता है अनिवृत्तिकरण के बहुभाग जाने
संख्यात बहुभाग जाने पर
सभी तक क्या होगा सभी तक अंतरकरण नहीं हुआ है सभी तक उदय में आ रहा है उदय में नहीं आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे,
कुछ नहीं कहेंगे तब तक उसके उपशम का कार्य तो शुरू हुआ, यथा योग्य उसके जो कुछ स्थिति कांडक वगैरह बातें बन रही है वो तो बनेगी तब तक, अभी वो सवाल नहीं अपना। अभी यहाँ बात कौन से करण कहाँ पर, ये प्रश्न क्या पूछा था देखो
कहाँ पे विच्छेद होते हैं कितना अंतर करते।
अभी यहाँ जो मूल प्रकृतियों में हमने देखी, अब उत्तर प्रकृतियों के काल का अवलंबन लेकर ये बात यहाँ होने जा रही है। मूल प्रकृतियों में कौन से कर्म कहाँ विच्छिन्न होते हैं कहाँ क्या होते वो बात देखिए, आठों ही कर्मों में अपूर्वकरण के अंत तक तो सभी वो कर्ण यानी वो कर्ण थे, अनिवृत्तिकरण के पहले समय से वो तीन कर्ण नष्ट हो गए, अब उत्तर प्रकृतियों में हम लगा रहे हैं। देखो इसका हम फिर दोबारा पढ़ते 40 पृष्ठ पर देखो 93 नंबर का पॉइंट, यानी इस तीसरी गाथा क्यों उत्तीर्ण हुई है कि उत्तर प्रकृतियों में वो काल कहना है, इसलिए। अब कहते 93 पॉइंट मिला ना। यह गाथा सूत्र का पूर्वार्ध काल को विशेषण बनाकर उत्तर प्रकृतियों में कर्णों के उपशांत और अनुपशांत अवस्था का प्ररूपण किस प्रकार करता है, ऐसी आशंका के होने पर निशंक करने के लिए कुछ अवयवार्थ का परामर्श करते हैं। गाथा के कुछ अवयव, कुछ पार्ट, उसका जो अर्थ है उसका परामर्श इस पर चर्चा करेंगे। कितने काल के भीतर उपशामना की जाती है, ऐसा कहने पर अंतरकरण क्रिया संपन्न होने पर, यानी अंतर करने के पश्चात किन कर्मों का कौन सा करण कितने काल के द्वारा उपशमाया जाता है, इस प्रकार इस वचन द्वारा नपुसक वेद आदि प्रकृतियों से संबंध रखने वाले सभी कर्णों का उपशामना में लगने वाला काल विशेष पूछा गया है। संक्रमण और उदीर्णा कितने काल तक होते हैं, इस प्रकार इस सूत्र वचन द्वारा उन्हीं संक्रमण और उदीर्णा आदि कर्णों की काल सहित अनुपशांत अवस्था कितने काल तक रहती है। संक्रमण कितने काल तक रहता है, इसका अर्थ है संक्रमण अभी मिटा नहीं है। उदीर्णा कितने काल तक होती है, इसका अर्थ है उदीर्णा नाम का जो करण है अभी उपशांत नहीं हुआ है। कौन से करण उपशांत हुए, निदति निकाचना रोग और प्रशस्त उपशम, ये उपशांत हुए, वो उपशांत हुए है, उसी का अर्थ अन्य प्रशस्त उपशम वो अनुपशांत हो गए, ऐसा है। वो उपशांत नहीं हुए उसका अर्थ आगे हमने अभी पढ़ा था, अभी उसकी बात नहीं, अभी हम ये पे 93 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं, यानी कितने काल तक संक्रमण और उदीर्णा होती है, इसका अर्थ क्या है। अब वो संक्रमण और उदीर्णा रुकी नहीं है, यानी उस करण अभी अनुपशांत है, वे करण अभी चल रहे हैं। सर्वोपशामना में सभी करण मिट जाएंगे। पहले में पहले नपुंसक वेद आदि संक्रमण भी हो रही थी, उसका उदय होगा तो उदीर्णा भी हो रही, तो कितने काल तक चलेगा, तो यथा योग्य उसका अपना अपना काल बताएंगे, जहाँ जो अंतर्मूर्त है। उसके बाद क्या होगा, पूरी तरह से उपशमित हो जाएगा, यानी उसमें से ये सभी करण नष्ट हो जाएंगे। सभी करण नष्ट हो जाएंगे, परंतु सत्ता है इसलिए वो सत्व वाला करण भी यहाँ नहीं लिया है, आठी करण लिए हैं, तो उसका अर्थ होता है सभी करण नष्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे कितने काल तक चलते रहेंगे का अर्थ, अभी वो करण चल रहे हैं, करण उपशांत नहीं हुए, यह पूछा गया है। नीचे से दूसरी लाइन 93 पॉइंट, उन करणों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त रहना अनुपशांत अवस्था है। अच्छा हुआ फिर से पढ़ा, एक कर्णों के ऊपर उपशम अपशम अनुपशम लगाना है। प्रकृतियों की हम उपशम अनुपशम अवस्था जो कहते हैं, तो उस प्रकृतियों में जो करण हो रहे हैं वो सभी करण उपशमित हो जाएंगे, सभी करण नष्ट हो जाएंगे। तो करणों का, उन करणों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त रहना, जैसे संक्रमण करण है वो चलते रहना, उदीर्णा करण है वो चलते रहना, इसको कहेंगे उसकी अनुपशांत अवस्था है। किसकी, करणों की। और उन्हीं करणों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त नहीं रहना उपशांत अवस्था है, यह विवक्षित है। समझ में आई बात। अब ये बात प्रकृतियों पर बता रहे, उत्तर प्रकृतियों, देखो अब फिर पढ़ेंगे हम 94 पॉइंट। यहाँ पर प्रकृत अर्थ की गवेषणा करने पर, गवेषणा यानी उसकी शोध खोज, मूल प्रकृतियों के भंग के अनुसार सभी कर्मों के कर्णों का विच्छेद और अविच्छेद जानना चाहिए। मूल प्रकृतियों में जैसे हमने कर्णों के विच्छेद अविच्छेद कहे थे, वो तो घटित हो गए ही हो गए। विशेषता जो कभी मोहिनी की बात चल रही है, तभी मोहिनी में यह बताएंगे नपुसक वेद। यथा नपुसक वेद के तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशामना आदि तीन करण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी वही प्रशस्त करणोपशामना है। क्योंकि अप्रशस्त भाव से अनुपशांत हुए उनकी, अच्छा अच्छा प्रशस्त भाव से उपशांत भाव की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। ओ एक करण की उपशामना हुई, अप्रशस्त उपशामना नष्ट हुई, यानी अप्रशस्त नाम का, अप्रशस्त उपशामना नाम का करण है
उपशमित्व।
अप्रशस्त उपशामना नाम का करण है, उस करण की उपशामना हुई। उसको अनुपशांत कहें, नहीं होना उसको अनुपशांत, यानी देखो ये फिर से 93 में नीचे से दूसरी लाइन, करणों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त रहना, यानी वो करण चलते रहना वो करणों की अनुपशांत अवस्था है, यानी करण नष्ट नहीं हुए चल रहे, और करणों का अपने स्वरूप से प्रवृत्त नहीं होना, जैसे संक्रमण की प्रवृत्ति रुक गई तो हम कहेंगे संक्रमण करण उपशांत हो गया। अभी ये जो हम प्रशस्त उपशम वो अंतर वाला उपशम है उसकी बात नहीं, आपका जो प्रश्न था ना, यहाँ प्रशस्त उपशम नहीं कहा, प्रशस्त कर्णोपशामना कहा। प्रशस्त कर्णोपशामना किसको कहते हैं? प्रशस्त भाव के कारण जिस करण की उपशामना होती है, वो प्रकृति की उपशामना की बात नहीं है।
अच्छा, यह करण की बात है।
ये अब हमने 93 पॉइंट पढ़ा ना, इसलिए और ज्यादा क्लियर हो गया। अप्रशस्त उपशामना चल रही थी, ये एक करण है। इस अप्रशस्त उपशामना नाम का जो करण है, या निधत्ति नाम का जो करण है, निकाचना नाम का जो करण है, उस करण की उपशामना हुई। क्यों हुई? प्रशस्त भाव के कारण। ऐसा प्रशस्त भाव पहले नहीं हुआ था, अनिवृत्तिकरण के पहले समय में जो विशुद्धि हुई है, पहले गुणस्थान से आठवें के अंत तक जो कुछ वहां विशुद्धि थी, वो ऐसी नहीं थी कि इन तीन करणों को रोक सके। ये करण अभी मिट गए, तीन करण मिट गए, नष्ट हुए, उपशांत हुए, करणों को उपशमित किया, किस कारण? प्रशस्त भाव से। ऑर्डिनरी प्रशस्त ने शुभ भाव की बात नहीं है यहाँ पर। नवे गुणस्थान के प्रशस्त परिणाम के कारण ये करण उपशमित हो गए हैं, उसी को प्रशस्त करण उपशामना कहा। ख्याल में आई बात? अब इधर देखना। क्योंकि अप्रशस्त भाव से अनुपशांत हुए उनकी, क्या कहा, जो करण अप्रशस्त भाव के कारण अनुपशांत रहे थे यानी चल रहे थे, अब तक के जो अपूर्व करण तक के जो परिणाम है उनको अप्रशस्त भाव कहा। तो निधत्ति, निकाचना और ये अप्रशस्त उपशम, ये तीन जो करण है वह अप्रशस्त भाव से अनुपशांत थे यानी अपनी प्रवृत्ति चल रही थी, उनकी प्रशस्त भाव से उपशांत भाव की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। यानी अपूर्व अनिवृत्तिकरण के परिणाम को प्रशस्त भाव कहा, अनिवृत्ति के जो परिणाम है। ऐसे प्रशस्त परिणाम है प्रशस्त कहे।
तो यह प्रशस्त भाव से
उनके कारण
अनुपशांत जो पना था उसकी विच्छुति हो गए, वो शांत हो गए।
हाँ, अनुपशांत थे। हाँ। वे उपशांत हुए।
हाँ,
यानी अनिवृत्तिकरण परिणाम के कारण तीन करण नष्ट हुए, उसी को कहे तीन करण उपशांत हुए। तीन करण प्रशस्त भाव से उपशांत हुए, उसी को प्रशस्त उपशम कहा। ये प्रशस्त कर्णोपशम है। अनिवृत्तिकरण के परिणाम, उसी को कहा प्रशस्त परिणाम। उनके कारण क्या हुआ? जो तीन करण, कौन से तीन करण?
अप्रशस्त,
उच्छामना, निदत्ति और निकासना, ये तीन करण नष्ट हुए कहो, उपशमित हुए कहो, उसी को प्रशस्त उपशम कहते हैं। प्रशस्त कर्णोपशम है ना, ये कर्णों का उपशम हुआ, इन तीन कर्णों का उपशम हुआ, प्रशस्त परिणाम के कारण हुआ, इसी को प्रशस्त उपशम कहा, प्रशस्त कर्णोपशम। हम तो वो अपूर्व अंतर के बात करते हैं, अंतर के बात करते उसी को हम प्रशस्त कहते हैं, परंतु यहाँ तो ज्यादा एक्सप्लेन किया है, प्रशस्त कर्णोपशमना कह दिया उसको। फिर पढ़ो के ख्याल में आई बात, देखो नपुसक वेद के तो अनिवृत्ति करण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशमना आदि तीन करण नष्ट हो जाते हैं, अप्रशस्त उपशमना, निदत्ति और निकासित, इसलिए उनकी यानी इन तीन करणों की वही प्रशस्त कर्णोपशमना है। तीन करणों की प्रशस्त उपशमना हुई, प्रकृति की उपशमना की यहाँ बात नहीं चल रही, कर्णों की उपशमना हुई, क्योंकि अप्रशस्त भाव से अनुपशांत हुए उनकी अप्रशस्त भाव के कारण ये तीन करण अभी तक अनुपशांत थे, यानी उनकी प्रवृत्ति चल रही थी, उनकी प्रशस्त भाव से उपशांत भाव की सिद्धि में प्रतिबंध का अभाव है। शेष करण यानी बाकी के करण, बाकी कितने रहे? पांच। कौन कौन से? बंध है, उदीर्ण है, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण। तो शेष करण अपने सर्वोपशम के स्थान में नष्ट हो जाते हैं, सर्वकर्णोपशम ना कहेंगे, सभी कर्ण रुक गए। इतनी विशेषता है कि श्रेणी में नपुसक वेद का बंधन करण नहीं है। अब वो यथा योग्य जिस प्रकृति में जो पॉसिबल है वो बताना, और इसीलिए उसका उत्कर्षणाकरण भी नहीं है, क्योंकि किसी भी वेद से श्रेणी क्यों न चढ़े, यहाँ नपुसक वेद की बात ली इसलिए नपुसक वेद का बंधन करण नहीं कहा, त्रिवेद की बात आई तो वहां भी कहेंगे उसका भी बंधन नहीं है। तो नपुसक वेद का बंधन करण नहीं है, और जहां बंधन करण नहीं वहां उत्कर्षण करण भी नहीं होगा, ऐसा कहना चाहिए।
तो यहाँ पे इसे पकड़ सकते हैं कि पहले गुण स्थान में जो भाव था वहां पे बंध करण रुक गया, तो वहां पे वो प्रशस्त भाव कहलाएगा नहीं?
नहीं,
नपुसक वेद के लिए
ये प्रशस्त, इनके तीन के लिए अप्रशस्त उपशमना आदि तीन करण नष्ट हो जाते हैं,
हाँ,
उसके लिए। अभी नपुसक वेद के लिए उसका बंधन करण वहां रुक गया,
हाँ,
तो उसके लिए प्रशस्त उपशमना वहां नहीं कही है। अनिवृत्तिकरण में ही बताएंगे। इसी प्रकार स्त्रीवेद का भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार ये उपशम श्रेणी में जो अभी उपशमित हो रहे वहां से बात चल रही है। अब ये नवे गुणस्थान में ही किसका बंध है किसकी नहीं है उसकी चर्चा है। छह नौ कषायों का कथन करना चाहिए, क्योंकि उनके कथन से इनके कथन में कोई भेद नहीं है, यानी इनका भी यहाँ बंध नहीं है और इनका भी यहाँ उत्कर्षण नहीं है। बंध हो तो ही उत्कर्षण हो सकता है। छह नौ कषायों के बंध की विच्छुत्ति कहाँ हुई है, याद है आपको? आठवें में, क्या सभी आठवें में गए? हाँ हाँ बोलो, छठे में कौन कौन से गए? बंध की विच्छुत्ति, अरति और शोक छठे में गए, और हास्य रति भज गुप्ता आठवें के सातवें भाग में। यहाँ पर उसका बंधन नहीं है, यहाँ अनिवृत्तिकरण की चर्चा चल रही है। यहाँ विषय नहीं है कहाँ भी अंदर इच्छित है, ये तो हम अपने हाँ हमारा पक्का करने के लिए पूछ। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदि आठ कषायों का भी कथन करना चाहिए, क्योंकि उसका भी बंध नहीं है, उसका भी उत्कर्षण नहीं होगा। इतनी विशेषता है कि अपने अपने सर्वोपशामना का स्थान जान लेना चाहिए। अपना अपना सर्वोपशामना, यहाँ सर्वोपशामना किसको कहा? सभी कर्णों का उपशमित होना, उसको सर्वोपशामना कहा। तो नपुंसक वेद का पहले होगा, फिर श्रीवेद की, फिर वो क्रम से जहाँ जिसका होगा। हर एक का अपना अपना स्थान जान लेना चाहिए, जो हमने पहले ही तेरहवीं पुस्तक में देखा है, उपशम श्रेणी में कौन से प्रकृति पहले उपशमित होती है, बाद में कौन सी, वहाँ तो प्रकृतियों के नाम भी। यहाँ सभी उनके एक एक प्रकृति के अपना अपना सर्वोपशामना का स्थान जान लेना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष वेद और चार संगलनों के प्रकृत अर्थ को जानकर गवेषणा करनी चाहिए। अब इसी प्रकार लिखा, परंतु पुरुष वेद और चार संगलन का बंध है यहाँ पर, तो बंधन है तो यहाँ उत्कर्षण करण भी होगा। अथवा तीन संज्वलनों के, अथवा कह के बता रहे, तीन संज्वलनों के बंधन करण, उत्कर्षणाकरण, उष के रफार बराबर करना। उत्कर्षणा अपकर्षणा ऐसा उन्होंने शब्द लिखा। उत्कर्षणाकरण कौमा देना, संक्रामण करण, संक्रामण क्यों का संक्रमणा के चाहिए, संक्रमणा चाहिए थी ना, उत्कर्षणा कहा संक्रमणा चाहिए। संजनन से बंधना, उपकडना, संक्रमणा, संक्रमण कहो, संक्रामण, संक्रमण करण कहो या संक्रमणाकरण कहो चलेगा, संक्र करना। देखो तीन संज्वलन को बंधन करण, उत्कर्षण करण, संक्रमण करण, लोभ को छोड़ा है अभी तो, क्योंकि लोभ की बात बाद में करेंगे। ये यहाँ ऊपर जो लिखा है ना प्राकृत में, उसके अनुसार यहाँ उन्होंने ले लिया है। वहाँ संकामण ही लिखा है ऊपर, बंधना, उपकडना, संकामण, उपकडना, उदय उदीरना, जावो अनियति, सूत्र सूत्र दिए जाते पीछे से, पूरा का पूरा नहीं दिया जाता। देखो देखो हम पढ़ेंगे पूरा वाक्य। अथवा तीन संज्वलनों के बंधन करण, उत्कर्षणाकरण, संक्रमण करण, अपकर्षणाकरण, उदय और उदीर्णाकरण अनिवृत्तिकरण तक होते हैं, तथा उपशामनाकरण, निकाचनाकरण और निधत्तीकरण अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होते हैं। इसी का अर्थ ये तीन करण उपशमित हो जाते हैं अनिवृत्तिकरण के पहले समय में, और बाकी करण अनिवृत्ति तक चलते रहते हैं, बाद में वो उपशमित हो जाते हैं। लोग को इसलिए छोड़ा उसका, क्योंकि उसका उदय और उदीर्णा दशा में चलेगा, बंधन नहीं है वहां पर, उत्कर्षण भी नहीं है, संक्रमण भी नहीं है, फिर भी अपकर्षणा भी चलेगा, उदय उदीर्णा भी चलेगा। परंतु सत्व उपशांत कषाय गुणस्थान तक होता है। सत्व को यहाँ करणों में नहीं गिना है, फिर जब दस करण कहते हैं तब उसमें सत्व को भी गिना है। इसी प्रकार पुरुष वेद का जानना चाहिए। समझ में आया, पुरुष वेद और तीन संज्वलन
एक साथ,
तो उनके सभी में ये बातें घटित होगी अनिवृत्तिकरण के अंत तक, यानी अपने अपने उसकी पोजीशन समझ लिया। लोभ संज्वलन के, अभी लोभ में क्यों अलग निकाला, तो लोभ संज्वलन के बंधनकरण, उत्कर्षणाकरण, और संक्रमणाकरण अनिवृत्ति गुण स्थान तक होते हैं। संक्रमणाकरण क्यों कहे इनके? यहाँ तक अनिवृत्तिकरण में अंतर करने के पूर्व तक हो सकता है।
अनुपूर्वी संक्रमण अंतर
की बात नहीं, अनुपूर्वी अंतरकरण के बाद शुरू होती है। तीन संयोजन अनिवृत्तिकरण तक होते हैं लिखा ना। अनिवृत्तिकरण गुण अनिवृत्ति गुण स्थान तक होते लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा है? लोह संयोजन से बंधना उत्पादन संक्रमण जावो अनिवृत्ति अनिवृत्ति तक, इसलिए उसका भाषांतर कर दिया अनिवृत्ति तक होते हैं। हाँ, और अपवर्तनाकरण और उदीर्णाकरण सूक्ष्म सांप्राय में एक समय अधिक एक आवली काल रहने तक होते हैं। यानी अपवर्तनाकरण है अपकर्षण, उदीर्णा भी उसी का एक प्रकार है।
एक आवली
तो आवली और उसके ऊपर एक समय है, तो उस एक समय वाले निषेक में से नीचे उदीर्णा होगी वहां तक चलेगा। सूक्ष्म सांप्राय में आवली प्लस एक समय बाकी है वहां तक अपकर्षण और उदीर्णा चलेगी, वहां संक्रमणकरण नहीं होता। यहाँ अनिवृत्तिकरण तक होता है कहाँ? परंतु कहाँ तक है उसमें तो अंतर करने के पूर्व तक, उसके बाद लोभ का संक्रमण रुक जाएगा। उदय और सत्व सूक्ष्म सांप्राय क्षपक के अंतिम समय तक होते हैं। और यहाँ उपशम श्रेणी में देखना है तो
उपशम तक होता है सत्व।
उदय तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय तक है
सत्व,
और सत्व ग्यारहवें में
उपशम
अथवा यहाँ लिखा है सत्व उपशांत गुणस्थान के अंतिम समय तक होता है। वो टॉप मोस्ट बताना है इसलिए, उसके बाद नीचे आएगा क्रम से। तो सत्व तो है ही है, सत्व तो नष्ट नहीं होने वाला। उपशामनाकरण निकाचनाकरण और निधत्तीकरण अपूर्वकरण के अंतिम समय तक होते हैं। यहाँ उपशामना में अप्रशस्त उपशामना लेना है। अभिनिबोधिक बो करना उसको। नितिन भाई इसका अर्थ क्या है? अभिनिबोधिक ज्ञानावरण, ये कौन सा नया निकाला नाम? सुना है ना? ही नहीं ना। हाँ, मति ज्ञान आवरण, उसको अभिनिबोधिक क्यों कहते हैं? अभी देवलाली में प्रश्न पूछा, कोई नहीं बता सका। देवलाली में पूछा था ना। हाँ हाँ, अभि यानी अभिमुख, मी यानी निश्चित, ज्ञान के अभिमुख ना, इंद्रियों के यानी वो विषय के अभिमुख। देखो देखो, मति ज्ञान अभी हम कहेंगे ने, इन चक्षु संबंधी मति ज्ञान की बात करेंगे। तो ये कैसे जानता है? तो जो नेत्र इंद्रिय का विषय उसके अभिमुख होकर, स्पर्शन है तो ये इसके अभिमुख होकर जानता है। यानी इंद्रियों का या उपयोग का उस विषय के अभिमुख होना एक बात, परंतु संगीत चल रहा है तो नेत्र इंद्रियों के द्वारा उसके अभिमुख होकर जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो नेत्र का विषय क्या है? कलर, विषय, देखना उसका कार्य हुआ। उसका विषय क्या है? जिसको देखता है वो उसका विषय है। वर्ण को आकार को कहेंगे ना, उद्गल के वर्ण को और आकार को आदि को वो देखता है। तो ये आकार वर्ण आदि क्या हुए? उसके विषय हुए। कोई ध्वनि है तो विषय किस इंद्रिय का है? कर्ण इंद्रिय का है। तो इंद्रिया अपने निश्चित विषय के सन्मुख होकर जानता है, बोध यानी ज्ञान होता है, इसलिए उसका नाम है आभि अभी यानी अभिमुख, अभी से अभी तैयार हुआ, जैसे शरीर से शारीरिक कहते हैं, जैसे अभिमुख से अभी, अभी निबोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान, ये हमने बहुत बार पढ़ा था उसमें झोला में आया था। नहीं नहीं आपके लिए तो नया है क्योंकि आप सुना था। मति ज्ञान को ही अभी निबोधिक ज्ञान कहते हैं। तो अभी निबोधिक ज्ञानावरण आदि यानी मति ज्ञानावरण आदि का भंग अपनी मूल प्रकृतियों के अनुसार जानकर कहना चाहिए। तो ज्ञानावरण में क्या घटित होता है?
अपूर्वकरण के अंत तक।
हाँ, अपूर्वकरण के अंत तक तो सभी करण चल रहे हैं, फिर वो तीन करण उपशमित हो जाएंगे, बाकी करण चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे?
बंद है तब तक। बंद है तब तक।
बंद है तब तक,
एक मिनट,
बंद
नहीं, बंद तो
अभी
तक
अभी
तक
सभी सभी करण घटित करा, तीन करण अपूर्व करण तक है।
हाँ।
अभी बंधन करण है, उत्कर्षण करण है, संक्रमण करण है।
अच्छा, बंधन करण और उत्कर्षण करण ज्ञानावरण में दसवें के अंत तक हो? नहीं, एक आवली पहले तक होगा।
क्यों
नहीं, दसवें तक होगा, दसवें तक होगा, सॉरी।
जहाँ तक बंद है तब तक उत्कर्षण और संक्रमण भी है।
और उदयकरण, उदयकरण और अपवर्तकरण बारहवें के एक आवली के पहले तक होगा।
यानी बारहवें गुण स्थान में आवली प्लस एक समय बाकी है,
तभी तक उदीर्ण,
तब तक उसका
उदय,
उदय है, उदीर्ण है। संक्रमण होगा कि नहीं होगा?
संक्रमण होगा ना,
कैसे होगा, बंद नहीं है तो।
सॉरी, संक्रमण नहीं, संक्रमण नहीं होगा।
सर, मैंने कुछ नोट्स निकाले थे इसके ऊपर से, देखेंगे कि हाँ ये ऐसा लंबा है था ना उसमें।
तो ये क्या होता है जब बारहवें के अंत में ये ज्ञानावरण दर्शन पढ़ाने
नष्ट हो जाते हैं? क्या हुआ था उसमें?
अकर्मण रूप हो
गया, अपने रूप से ही उदय में आ रहे हैं। अभी जैसे नपुंसक वेद है वो अन्य रूप से हुआ था, ये जो मोहनीय में क्या होता है, एक एक प्रकृति अन्य रूप, अन्य रूप, अन्य, लास्ट में जाके लोभ रूप पूरा मोहनीय का द्रव्य हुआ था, चारित्र मोहनीय का, और फिर लोभ है वो अपने रूप से नष्ट हुआ था। तो इसमें भी क्या होता है, स्थिति कांडक घात होते हैं, इतनी लंबी स्थिति वो घटते घटते घटते, अभी क्षपक श्रेणी की बात करना है, उपशम श्रेणी में कुछ नहीं होता है उसमें, यानी थोड़े बहुत स्थिति कांडक वगैरह होते परंतु नष्ट नहीं हो जाते। क्षपक श्रेणी में क्या हो गए, स्थिति कांडक होते 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 फिर बाद में थोड़े इतना रह गया, फिर वो तो उदीर्णा भी निषेक्षित है, क्योंकि उसमें गुण श्रेणी भी बनी थी, बहुत अधिक 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 खिर रहे थे, निर्जरा बहुत चल रही थी ना, गुण श्रेणी रूप से रचना होती गई, क्योंकि इसमें तो अंतर पड़ा परंतु उसमें तो गुण श्रेणी चलती ही रही थी ज्ञानावरण आदि में। क्षपक श्रेणी में जब बात आई तो उसकी ज्यादा और क्लैरिटी हो जाएगी।
कल मेरे को कोई बोल रहा था कि गुरुदेव ने स्ट्रांगली निषेध किया है कि ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि कर्णानी योग आप क्यों इतना डिटेल में पढ़ते हैं?
तो आपका क्या विचार है?
नहीं नहीं, मैं तो आई एम वेरी
कोई कुछ भी कहे, और किसके लिए कहा था?
मैं बोलने का भूल गया।
हाँ, सभा में, क्योंकि द्रव्यानियोग की मुख्यता है, लोग कर्णानियोग के इसमें तो निमित्ताधीन हो जाते हैं।
हाँ, मैं बोलने को भूल गया कि आप कर्म को नहीं देखो, जीव के परिणाम को देखो।
निषेध नहीं हो सकता, द्रव्यानियोग जिसने पचाया है अब वो क्या करेगा? मुनियों ने क्यों लिखा ये? ये किसी, हाँ, सभा में चलेगा तो उनके सामने कौन सी सभा थी, उसका भी हमें विचार करना चाहिए।
उन्होंने झोला भी पढ़ा था, वो कैसा निषेध करेंगे?
एक पहला बात था,
नहीं नहीं आठ भाग तक लिए थे, वहां ब्रह्मचारी बहने बताती है दो दो बार लिए थे, आठवें भाग तक दो बार प्रवचन हुए थे, सभा में हुए थे। वो कहने वाली ब्रह्मचारी बहने आज भी है, अभी हयात है। अभी चलो वो विषय जाने दो। ऐसे जो कुछ कहते हैं उनको उत्तर भी देना नहीं, उसको कुछ समाधान भी करने की जरूरत नहीं। अभी हम तो ऐसे पोजीशन पर आए हैं ना, अभी अभी तो डिगने वाले तो है ही नहीं है। कोई कुछ भी कहे, हमें अपने से अड़िग होना चाहिए। चल अभी बाकी तो बाद में मैं पढ़ूंगी। अभी अन्य छह कर्म में मोहिनी को भी हटा दो, पांच कर्मों की बात, यानी जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतरा है, नाम है और गोत्र है, उनका बंध कहाँ तक है?
दसवें।
क्योंकि बाद में तो साता वेदिनी का बंध है, तो वहाँ बंध भी, उत्कर्षण भी और संक्रमण भी दसवें तक, बराबर। सत्व, उदय और उदीर्णा,
बारहवें के
तीन घाती की, सत्व और उदय बारहवें के अंत तक, और उदीर्णा एक आवली प्लस एक समय पहले तक। नाम और गोत्र का उदय, मूल प्रकृति की बात कर रही मैं, चौदहवें तक, यशस कीर्ति उच्च गोत्र है ना,
चौदहवें तक।
उदीर्णा
तेरहवें तक,
क्योंकि उदीर्णा की उच्चति तेरहवें में हो जाती है। अपकर्षण
तेरहवें तक।
यहाँ तो सत्व की भी बात ली थी उन्होंने, सत्व
चौदहवें तक
और उसकी उपशमना, यानी कौन सा अप्रशस्त उपशम, निधत्ति और निकाचना, आठवें के अंत तक। यही बात होगी ना अभी जो ज्ञानावरण की बताई उन्होंने, बताई कि मति ज्ञानावरण आदि का भंग अपनी मूल प्रकृतियों के अनुसार जानकर कहना चाहिए। तो ये पांच कर्मों में ये बात घटित होगी। अब मोहिनी में लगाएंगे,
तीन तो अपूर्वकरण के अंत तक है,
बंध कहाँ तक है, मोहिनी इन जनरल बात करेंगे।
नवे के अंत तक,
नवे के अंत तक मोहिनी का बंध है।
उत्कर्षण
नवे, संक्रमण
नवे तक।
अभी हमने देखा ना संक्रमण भी नवे तक, क्योंकि दसवें वाले को लोभ है परंतु संक्रमण नहीं है। सत्व, उसका संक्रमण ही नहीं होता, उसका तो वो पुष्टि रूप से होकर फिर नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप से नष्ट हो जाता है। उसमें अपकर्षण रहता है, उदीर्णा रहती है, परंतु अभी वो अन्य किसी रूप से नहीं होता। क्या कहते हैं?
सत्व 11 तक है।
सत्व कहाँ तक है? 11वें तक।
मैं 10 तक है। मैं सप्तक श्रेणी के अपेक्षा करता हूँ।
तो अपकर्षण कहाँ तक होगा? अपकर्षण
10वें के एक आवली पहले।
मोहिनी इन जनरल करेंगे हम अपकर्षण, तो 10वें में करेंगे,
10वें में एक आवली पहले।
हाँ, परंतु अगर दर्शन मोहिनी की अपेक्षा लगाएंगे
तो
11वें में भी अपकर्षण कहेंगे। वहाँ पर
संक्रमण भी होगा,
उसका संक्रमण भी है और अपकर्षण भी है। किसकी अपेक्षा? दर्शन मुनि की अपेक्षा। और उपशम, निदति, निकाषक तो 8वें तक है, जो हमने सभी कर्मों में लगाया था। अब दर्शन मुनि का अकेले का देखेंगे, मिथ्यात्व का, बंध, उत्कर्षण और संक्रमण कहाँ?
पहले गुण।
संक्रमण तो चौथे गुण स्थान के बाद
है। संक्रमण है ऊपर, सॉरी,
मिथ्यात्व का संक्रमण पहले में नहीं है।
नहीं है, खाली बंध,
जहाँ बंध है वहाँ उसका संक्रमण नहीं है, मिथ्यात्व का संक्रमण। क्योंकि दर्शन मुनि ऐसी है कि बंधने वाले में संक्रमित होता है, ऐसा नियम वहां नहीं लगाते। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चौथे से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा बोलो?
11वें
तक चलेगा। और उदय, उदीर्णा मिथ्यात्व की
पहले
में, यानी बंध, उत्कर्षण, उदय, उदीर्णा, वो एक अवली पहले तक। संक्रमण चौथे से लेकर 11वें तक होगा,
चौथे से 11वें तक।
अपकर्षण भी 11वें तक चलेगा।
हाँ।
दर्शन मुनि का सत्व 11वें तक है।
नहीं, अपकर्षण तो 7वें तक,
सत्वा और अपकर्षण 11वें तक बताए।
अच्छा, उदीर्ण
संक्रमण भी हो रहा है ना उसमें।
हाँ।
दर्शन मुनि में चल रहा है। ये ऐसे दिमाग से कुछ मैं सोच रही थी कल, वेदनी दिमाग से, वेदनी में लगाओ,
वेदनी का बंद है,
साता रसाता पर अलग अलग बंद है,
असाता का छठे तक बंद है,
नहीं नहीं अभी किसका बता रहे हो, असाता का,
असाता का,
असाता का बंद उत्कर्षण बोलो,
छठे के छठे तक
बंद,
छठे तक,
छठे तक उत्कर्षण,
छठे तक,
छठे तक
उदयना दोनों की छठे तक, उदीर्ण
उदीर्ण छठे तक,
दोनों की छठे,
दोनों अभी दोनों को मत मिलना, एक एक को अभी एक असाता की उदीर्ण
तेरहवें तक,
अरे छठे तक,
चौदह
उदीर्ण छठे तक,
उदय के उदय का
नहीं उदीर्ण पूछे मैंने,
छठे तो वो तो बताया दोनों,
और उदय चौदह तक। अभी संक्रमण,
संक्रमण छठे तक, छठे तक किसी एक दिन से
दसवें तक, असाता का संक्रमण जब तक साता का बंद है, कौन सा स्थिति बंद है,
स्थिति बंद है तभी तक वो आप तो करता है अनुभव नहीं नहीं करती दसवें तक,
साता का संक्रमण बाद में नहीं होगा,
के बारे में
असाता का संक्रमण कहाँ तक चलेगा,
नहीं 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 दसवें तक
लिखा है ना, पेज नंबर निकाल,
दसवें तक होगा ना असाता का,
35 आपने लिखा है ना,
साता का संक्रमण खाली छठे तक होगा,
देखो 35 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, असाता वेदनी की बात है, वहां पर बंधन उत्कर्षण उदीर्णा तो छठवे तक थी, संक्रमण दसवें तक,
खाली असाता का संक्रमण हम देखेंगे तो वो तो छठे तक ही लेना पड़ेगा ना,
असाता का संक्रमण जब तक साता का बंद होता है, असाता साता में हाँ। संक्रमित होगी
और तो साता का संक्रमण कभी तक ले सकते हैं,
जब तक असाता का बंद है
हाँ, तो वो छठे तक था, मैं उल्टा बताया हाँ। सॉरी,
अभी असाता की सभी बातें हो गई ना, यानी अपकर्षण भी तेरहवें तक होगा उसका, असाता हाँ। का अपकर्षण भी तेरहवें तक होगा, अभी साता का बोलो,
साता का बंद
बंद
तेरहवें तक, बराबर
बंद तेरहवें तक,
उत्कर्षण
उत्कर्षण
दसवें तक,
दसवें तक, क्योंकि वहां तक स्थिति बनती है,
अपकर्षण तेरहवें तक,
अपकर्षण तेरहवें तक,
सत्व
और उदय
चौदहवें
तक, संक्रमण और उदीर्ण
छठे तक,
हाँ क्योंकि उदीर्ण तो वेदनी पूरे वेदनी की छठे तक होती है, संक्रमण कब तक होगा, जब तक असाता बन रहा है तब तक साता असाता रूप हो जाएगी, बाकी उपशम निदति निकाचना आठवें तक,
आठवें तक पक्का हो गया,
किसमें, हाँ असाता का उदय चौदहवें तक है, अनुभाग हाँ दसवें में है वही रहेगा, तो परंतु दसवें के अंत में जो सत्ता में पड़ा हुआ जो सारा है
हीन हो जाता है
हाँ। वहाँ जो साता का बंद हुआ था हमने देखा था ना, प्रश्न वो नहीं, मैं दूसरा प्रश्न की कि पूर्व पहले पहले में बंदी थी, पहले जो बंदी थी उसकी सत्ता ज्यादा थी, और दसवें के अंत में जो साता वेदनीय बंदा उसकी शपथ की भी बात करें तो उसकी स्थिति कितनी बांधी, दसवें के अंत में बारह मुहूर्त शपथ श्रेणी में, दसवें के अंत में बारह मुहूर्त की स्थिति बंदी, तो बारह मुहूर्त बंदी तो बारह मुहूर्त में तो निकल जाएगी, उससे अधिक तो वे कर्म नहीं रहेंगे जिसमें मैक्सिमम अनुभाग बांधा था, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति है, दसवें के अंत में साता वेदनी जो बांधा वो प्रशस्त प्रकृति है और उसका मैक्सिमम अनुभाग तो तभी बंधा था, बात सही है ना, तो प्रश्न है उसके पहले का जो सत्व था वो पल्ले के असंख्यात भाग जितना था जो आगे चलकर केवली वगैरह के जो उदय में आएगा, तो वो क्या होगा, स्थिति उसकी ज्यादा है, ये तो 12 मुहूर्त में नष्ट होने
बढ़ता जाता है ना प्रोसेस।
वही तो कि यहाँ जो अनुभाग बन रहा है उस अनुभाग रूप से पुराने बंधे हुए परमाणु टर्न हो जाते हैं, उसको अनुभाग संक्रमण कहा
था। हमने देखा था ना क्या प्रोसेस
साता का ही साता में उदय किसका भी हो उसकी कुछ बात नहीं है, वहाँ साता का अपना ही संक्रमण पुराने बंधे हुए का उसका अपना अनुभाग बढ़ जाता है। दसवें के बाद में उसमें कुछ या असाता के जो परमाणु पड़े वो नहीं के बराबर है। हाँ, परंतु ये साता हो या असाता हो अब दोनों का कार्य कुछ नहीं रहा वहां पर। क्यों नहीं रहा? वो तो इंद्रिय जन्य जो कुछ है विषय में उसमें जीव को अब सुख बुद्धि होती है। क्यों बुद्धि होती है? बुद्धि होती है ना मान्यता होती है तो मोहनीय है, इसलिए ना उनके मोहनीय है और ना ही कोई इंद्रियों की बात है वहाँ पर, सब कुछ पूरा ही उनके ज्ञान का विषय हो गया है। संयोग बदलने का क्या सवाल है? साता असाता के कारण संयोग मिलते ही नहीं, जीव संयोगों को लक्ष्य करके सुखी होता है या दुखी होता है वो कुछ नहीं होता। ये तो कहने की बात है, कहने की पद्धति है। उसके कारण वो संयोग बदलते ऐसा कहना भी वो तो अभी जब हम ये तो प्राथमिक लोगों को बताने के लिए ठीक लगता है, परंतु अभी जैसे पंखा अभी चल नहीं रहा, किसके उदय से नहीं चल रहा? अब कहेंगे ठंडी है नहीं चल रहा तो अच्छा है। ये तो मोहनीय है तब तक उसको हम देख देख के, हम भी उनके संयोग को देख देख कर हमें अनुमान लगाते हैं। अंतकृत केवली में वो तो वो साता असाता भी वैसा जो केवल ज्ञान होने पर तो उनके कुछ है ही नहीं, वहां पर उपसर्ग भी नहीं रहते, वैसे उपसर्ग भी नहीं रहते, उपसर्ग भी नहीं रहते, 13 गुणस्थान में उपसर्ग रहता ही नहीं है, वो केवल ज्ञान का महात्म्य है, होते हुए उपसर्ग भी नष्ट हो जाते हैं, यानी बाह्य परिस्थिति भी वो नहीं रहती है। हाँ साता नहीं रहते, 13वें में नहीं रहते, नियम से दूर हो जाते। हाँ देखो
उपसर्ग 12वें तक चले गए ना।
हाँ चल सकते
के
ऐसा भी आता नहीं, ये तो
14वीं
पूर्व प्रकट होता है, 10 पूर्व प्रकट होते हैं तो व्यंतर आके पूजा करते हैं। अब यहाँ जब उनके केवल ज्ञान प्रकट होता है तो इंद्रादि काके भी वो सारा यानी बाह्यता भी वो कहेंगे हम उन्होंने दूर किया या कुछ, मैं वो दूर होते ही है, कुछ रहते नहीं है केवल ज्ञान होने पर। हम जो उपसर्ग केवली कहते हैं तो वो तो अंतर्मूर्त में तो उपसर्ग रूप से कुछ नहीं रहा, वो केवल ज्ञान ही हो गया और बस वो अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाते हैं, परंतु उपसर्ग नहीं रहता है सब शास्त्र का कथन। ये कहाँ तक आए थे हम? मूल प्रकृतियों के अनुसार लास्ट लाइन 41 पेज। इस प्रकार इस मार्गणा के समाप्त होने पर, मार्गणा ने हमने खोज की है ना, गवेषणा करनी चाहिए बताया था, गाथा के पूर्वार्ध की विभाषा समाप्त हुई। उन्होंने बताया कहाँ तक उपशांत रहते हैं, कहाँ तक अनुपशांत रहते हैं, यानी कहाँ तक संक्रमण उदीर्ण आदि चलती है, यानी हमने ये देखा कौन से कर्मों के कौन से करण कहाँ तक किस गुण स्थान तक चलते हैं और कहाँ तक वे नष्ट हो जाते हैं। अब गाथा के उत्तरार्ध की विभाषा करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। केवचिरम व संतमति विहासा, कितने काल तक उपशांत रहते हैं इसकी विभाषा करते हैं। ये जो कुछ कर्ण उपशांत हुए हैं कितने कारक रहेंगे, ये प्रश्न। यह सूत्र सुगम है, कितने काल तक उपशांत रहती है इसकी विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है, यानी ये जो बताए स्टेटमेंट उसका अर्थ सरल है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र भी सुगम है। उवसंतम निवाघादेन अंतो मोत्तम नपुंसक वेद, ये न क्यों किया, प्राकृत का न किया उन्होंने, सादा न चाहिए। ट्रेन कहाँ चली गई मेरी,
न भी चलेगा
न है ना, वो हिंदी में सादा न, नल नल वाला न चाहिए, ये बाण का न है, अणमोकार वाला न है। तो कहते हैं नपुंसक वेद आदि कर्म निर्व्याघात रूप से अंतर्मूर्त काल तक उपशांत रहते हैं। निर्व्याघात ही नहीं, उसमें व्याघात बाधा न आवे तो कौन सी बाधा आ सकती है, मरण की है ना।
पे
तो यहाँ कर्मों पर, कर्मों पर बताया, यहाँ कर्णों पर नहीं बताया, कर्मों पर बताया। नपुसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, छह सभी 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 जो 21 चारित्र होने की प्रकृति उपशमित होती है, कितने काल तक उपशमित रहेगी, अंतर्मोक्ष उसका लिमिट है। तो आदि कर्म निर्व्याघात रूप से, निर्व्याघात यानी बिना ब्रेक के बीच में, या उसमें कोई बाधा आवे, कौन सी बाधा आ सकती है, तो मरण आवे तो इमीडिएटली वो उपशमपना उसका नष्ट हो जाएगा, उसका उदय आदि यथायुग्य शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ कहते हैं यदि मरण संज्ञा वाला व्याघात नहीं होता तो, मरण नाम का व्याघात, व्याघात होना है नहीं, उसमें बाधा आ जानी, तो नपुसक वेद आदि प्रकृतियों का सर्वोपशम करके वह अंतर्मूर्त काल तक रहता है। सर्वोपशम करना ही उसके सर्व कर्णों की उपशमना है, क्योंकि इतने काल के बाद उनकी उपशम पर्याय का अवस्थान असंभव है। यानी ये जो सभी कर्ण उपशमित हो गए हैं वो अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं टिक सकते उसी अवस्था में। उपशम श्रेणी पर चढ़कर और सर्वोपशम करके पुनः उतरने वाले की जब तक प्रशस्त उपशमना नष्ट नहीं होती, तब तक अंतर्मूर्त काल सर्वोपशमना से परिणत होकर यह जीव अवस्थित रहता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह सभी कर्णों की उपशमना की बात है, क्योंकि हम तो केवल अंतरकरण के बाद सोचते हैं, परंतु ये जो तीन करण नष्ट हुए थे, उपशमित हुए थे, वो अनिवृत्ति करण तक तो रहेंगे, अपूर्व करण में प्रवेश करेगा तो ये तो करण अनुपशांत हुए, वो तीन, यानी जो सभी उपशमित हुए थे क्रम क्रम से, सभी अनुपशांत हो गए। व्याघात से तो एक समय भी प्राप्त होता है, व्याघात से एक समय प्राप्त होता है का अर्थ क्या है, जैसे अनिवृत्तिकरण में प्रवेश किया है और ये तीन करण उपशमित हुए हैं, एक समय में मरण हुआ, तो जो उपशमित हुए तो नष्ट हो गए, यानी धति निकाचना चालू हो गई उसकी, या ऊपर गए पूरी तरह से नपुंसक वेद पूर्ण तरीके से उपशमित हो गए, सभी करण उसके उपशमित हुए, वहां न उसका कुछ संक्रमण है ना कुछ अन्य भी है उसके, तो पूर्ण रीति से और वहां जाके उसका मरण हुआ
एक समय के बाद,
तो उसी समय वो देव पर्याय में उत्पन्न होगा और वहां उपशमित हुए कर्ण सब चालू हो जाएगा। वह कैसे, समाधान, नपुसक वेद की प्रशस्तोपशमना करके और एक समय रहकर तदनंतर समय में कालगत होकर, कालगत होने ने मरना, मरण को काल भी कहते हैं, जो देवों में उत्पन्न हुआ है, इनको देवों में ही क्यों उत्पन्न कराया, हाँ प्रेरणा भाई,
मरण
गुण स्थान में मरा। हाँ क्यों क्यों, वही तो प्रश्न है। हाँ बहुत बहुत, जो बिना देवायु के अन्य कहीं आयु का बंद किया हो तो पांचवें गुण स्थान में भी नहीं जाता, ऊपर जाने का सवाल नहीं। तो जो देवों में उत्पन्न हुआ है उसके व्याघात से एक समय प्रशस्त उपशम उपलब्ध होता है, यानी एक समय के लिए प्रशस्त उपशम हुआ, दूसरे समय में तो मर गया, तो जो करण उपशमित हुए थे अनुपशमित हो गए, करण वो चालू हो गए फिर से। इसी प्रकार स्त्रीवेद आदि की अपेक्षा भी योजना करनी चाहिए, यानी सोचना चाहिए, क्योंकि स्त्रीवेद के करण उपशमित हुए हैं एक या अधिक जो कुछ है यथायोग्य, और वहीं पर मरण हुआ, तो जो करण उपशमित हुए हैं वो अनुपशमित हो जाएगी। अनुवसंतम च केवचिरम की विहासा, ये उवसमित कितने काल तक रहते हैं, तो कहते हैं निर्व्याघ्रत रूप से अंतर्मोत और मरण की अपेक्षा एक समय तक। अब कहते हैं, अब पूछ रहे हैं, अब कौन कर्म कितने काल तक अनुपशांत रहते हैं, इस पद की विभाषा करते हैं।
कौन कर्म कितने काल तक अनुपशांत रहते हैं,
अब बताएंगे। यहाँ पर उपशम श्रेणी की बात करते हैं। यह सूत्र सुगम है, तम जहाँ वह जैसे, यह सूत्र भी सुगम है। अपसत्थ वसामणाय अणुवसंतानि कम्माणि निवाघादेन अंतोमोत्तम, अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत हुए कर्म निर्व्याघात रूप से, वो रूप बराबर करना, ख जैसे दिखता है, रूप से अंतर्मूर्त काल तक रहते हैं। वो यहाँ बताएं, देखो इसका अर्थ बताएंगे। अप्रशस्त उपशापना रूप से अनुपशांत हुए कर्म निर्व्याघात रूप से अंतर्मूर्त काल तक रहते हैं। प्रकृति में उपशामना दो प्रकार की है, प्रशस्त उपशामना और अप्रशस्त उपशामना। उपशामना अप्रस्त हुआ, अप्रशस्त उनमें से सर्वप्रथम अप्रशस्त उपशामना से अनुपशांत हुए कर्मों का सूत्र में यह काल निर्देश निर्दिष्ट किया गया है, वह जैसे उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशामना रूप से नपुसक वेद आदि कर्म अनुपशांत हुए।
नहीं तो ये भाषा कुछ अर्थपूर्ण लगती है, ऐसे तो उपशांत हुए इसे हम कहते हैं जनरल में, करण की बात है।
अप्रशस्त उपशामना नष्ट हुई, प्रशस्त उपशामना रूप से उपशमित हुए, अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत हुए, अप्रशस्त उपशामना नष्ट हुई, तो वो फिर से कब चालू होगी,
वापस
फिर आठवें में प्रवेश करेगा तो फिर अप्रशस्त उपशामना चालू हो जाएगी। ये उल्टा लगता है ना, प्रशस्त उपशामना शुरू हुई उसका अर्थ अप्रशस्त उपशामना अनुपशांत हुई। देखो फिर से पढ़ेंगे। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशामना रूप से नपुसक वेद आदि कर्म अनुपशांत हुए, यानी उनके अप्रशस्त उपशामना रुक गई। ख्याल में आई बात, प्रशस्त उपशामना शुरू हुई का अर्थ क्या है,
अप्रशस्त कर्म रुक गई,
मिट गई। हाँ। तत्पश्चात अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय से लेकर ऊपर चढ़कर पुनः उतरने वाले जीव के अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक अनुपशांत रहते हैं। किस रूप से? अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत रहते हैं, प्रशस्त उपशामना रूप से उपशमित हो रहे और अप्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशांत रह रहे। तत्पश्चात अपूर्वकरण के प्रथम समय को प्राप्त हुए उस जीव के अनुपशांत भाव दिखाई दिया, यानी अप्रशस्त उपशामना तक जो क्योंकि अप्रशस्त उपशामना की वहां पुनः उत्पत्ति देखी जाती है। यह निर्व्याधान विषयक काल है। निर्व्याघात चाहिए, व्याधान कहा उन्होंने, निर्व्याधान, निव्याघात काल, निव्वाघात कालो, निर्व्याघात चाहिए, धान नहीं घात, निर्व्याघात। व्याघात की अपेक्षा तो एक समय काल प्राप्त होता है, हम जो अंतर करने के बाद वो प्रशस्त उपशामना जो कहते थे, इसका अर्थ है अप्रशस्त उपशामना मिट गई है, वहीं से लेकर प्रशस्त उपशामना चालू हो गई, क्योंकि प्रशस्त तो भावों को कहना, प्रशस्त भाव है अनिवृत्तिकरण जो परिणाम है, उन परिणामों के कारण अप्रशस्त उपशामना मिट गई है, प्रशस्त उपशामना उसी समय से शुरू हो गई। तो व्याघात की अपेक्षा एक समय शंका, वह कैसे? उसका समाधान, एक अपूर्वकरण उपशामक जीव अनिवृत्तिकरण को प्राप्त हुआ, वहां उसी समय में तीन करण अनुपशांत हो गए। बहुत बार पढ़े ना ये तीन करण, कौन से? निकल पुनः वहां एक समय रहकर तदनंतर समय में देवों में उत्पन्न हुए उस जीव के प्रथम समय में अप्रशस्त उपशामना का पुनः उद्भव हो गया। उद्भव हो गया ने पुनः, वो तो उत्पन्न हो गए वो, इससे उसका एक समय काल प्राप्त होता है। तीन करण अनुपशांत हुए, अप्रशस्त उपशामना रूप से, निदत्ति रूप से अनुपशांत हुए, कर्म अनुपशांत हुए, ऐसा है कर्म इन तीन रूप से अनुपशांत हुए और कर्म प्रशस्त उपशम रूप से उपशम। ये अटपटा लगता है ना, पहले इसी को उपशांत हो गए वापरा था उन्होंने शब्द, नष्ट हो गए वापरा था, विच्छिन्न हुए वापरा था, अभी उसी के लिए कर्म इन रूप से अनुपशांत हुए ऐसा कह रहे हैं। अभी 44 पृष्ठ। इसी प्रकार सभी कर्मों की अपेक्षा प्रशस्त उपशामना के अनुपशांत रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अभी प्रशस्त उपशामना का अनुपशांत रहना, प्रशस्त उपशामना कितने काल तक चलेगी?
प्रशस्त उपशामना एक समय से लेकर
अंतर्मूर्त तक चलेगी, निर्व्याघात रूप से तो अंतर्मूर्त चलेगी। प्रशस्त उपशामना कितने काल तक चलेगी? तो कहते अंतर्मूर्त तक तो चलेगी, एक समय भी रह सकती है। तो प्रशस्त उपशामना अनुपशांत हुई, अभी प्रशस्त उपशामना रूप से अनुपशम हो गया जीव या कर्म, यानी प्रशस्त उपशामना रुक गई तो दोबारा प्रशस्त उपशामना कब होगी?
एक अंतर्मूर्त पश्चात,
अंतर्मूर्त में दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो
नीचे आके वापस ऊपर चलेगा,
और लंबे काल तक नहीं हुई तो अभी यही बता रहे। इसी प्रकार सभी कर्मों की अपेक्षा प्रशस्त उपशामना के अनुपशांत रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। प्रशस्त उपशामना का अनुपशांत रहना यानी दोबारा श्रेणी चढ़ना। जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ख्याल में यही बात ये प्रशस्त उपशम नहीं हो रहा है फिर दोबारा होगा तो अनुपशांत कितने काल तक रहा? तो मिनिमम अंतर्मूर्त के लिए और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल पर। शुरू में एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा था प्रशस्त उपशम होके, फिर वो प्रशस्त उपशम अनुपशांत हो गया, अब वो कितने काल तक रहेगा? तो अर्ध पुद्गल पर बाद में वो श्रेणी चढ़ेगा। नहीं प्रशस्त उपशम तो यहाँ पर भी प्रशस्त उपशम उपशम श्रेणी चढ़नी पड़ेगी फिर दोबारा, यहाँ छपना का कार्य तो कुछ अलग है। यह अर्थ सुगम है, इसलिए सूत्र में इसका निर्देश नहीं किया, क्योंकि सादी सपर्यवसित काल, ये सादी और सपर्यवसित क्या होता है तेजन? नहीं मालूम, आपको मालूम है? नहीं मयंक भाई, सपर्यवसित है नहीं क्या? सादी सपर्यवसित हमारा हमेशा का शब्द नहीं है इसलिए अटक गए। बोलो, नहीं मालूम नहीं? हाँ बोलो।
शांत
पर्यवसान होना है, अंत होना,
इसको सादी अनंत तो बता ही नहीं सकते ना।
देखो
क्योंकि नहीं मैं क्या पूछ रहा था कि अनंत काल तक तो इसे बता ही नहीं सकते क्योंकि पीछे कर्म ही नहीं रहते।
ये इसका सादी शांत ही काल है ना। क्यों? फिर प्रशस्त उपशम होगा बाद में तो उसका काल का अंत आ गया। क्योंकि सादी सपर्यवसित काल, पर्यवसान का अर्थ होता है अंत, उन्हें किसी का अवसान हो गया नहीं मरण हो गया। सादी शांत काल जघन्य और उत्कृष्ट रूप से तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट है उपार्ध पुद्गल परिवर्तन। इस प्रकार उपशाम के उपशामक से संबंध रखने वाली चार मूल गाथाओं की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। आगे उपशम श्रेणी से गिरने वाले जीव का व्याख्यान करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। 13वीं पुस्तक में हमने चढ़ने वाले की बात बहुत विस्तार से देखी, अब उतरने वाले की करेंगे। एतो परिवद माणयस्य विहासा, आगे उपशम श्रेणी से गिरने वाले जीव की प्ररूपणा करते। विहास है ने प्ररूपणा, परिवदमान है ने पढ़ने वाला, गिरने वाला। मराठी में पढ़ने कहते हैं, गिरने के लिए पढ़ना शब्द आता है। नहीं वहां से वो गिर गया के बदले
पढ़
तो पढ़ला पड़ी गया। हाँ कितने शब्द ये संस्कृत प्राकृत से आए ना, इसे प्राकृत से संबंध रखने में कितने ही शब्द हैं। ढूंढारी में भी मराठी से ज्यादा सामने है। हाँ कितने शब्द मराठी में डायरेक्ट वैसे के वैसे आते हैं। हिंदी वो तो हिंद में आगे उपशम श्रेणी से गिरने वाले जीव की प्ररूपणा करते हैं। चढ़ने वाला उपशामक का आश्रय लेकर यह संपूर्ण प्ररूपणा की, 13वें भाग में भी की और यहाँ पर भी उसके गाथा सूत्र के आधार से भी कर दे। आगे गिरने वाले को लक्ष्य में रखकर आगे ने इसके इससे आगे यहाँ से आगे आगे गिरने वाला नहीं
आगे
गिरने वाले को लक्ष्य में रखकर शेष चार गाथाओं संबंधी प्ररूपणा अधिकृत जाननी चाहिए। इस प्रकार प्रकृत विषय को संभालने वाला यह सूत्र वचन है। यहाँ चूर्णी सूत्र में चूर्णी बराबर कर गिरने वाला ऐसा कहने पर उपशम श्रेणी से उतरने वाला जीव लेना चाहिए। उतरने वाले की वह प्ररूपणा दो प्रकार की है, प्ररूपणा विभाषा और सूत्र विभाषा। उनमें से सूत्र पदों का उच्चारण किए बिना सूत्र से सूचित होने वाले अशेष अर्थ की, अशेष अर्थ है कुछ बाकी रखे बिना संपूर्ण अर्थ की विस्तार से प्ररूपणा करने का नाम प्ररूपणा विभाषा है। यानी सूत्र पदों को कहे बिना सूत्र में जो अर्थ पूरा आता है वो पूरा का पूरा बता देना, उसको कहेंगे प्ररूपणा विभाषा। तथा गाथा सूत्रों के प्रत्येक पद के अर्थ के परामर्श द्वारा सूत्र का स्पर्श करने का नाम सूत्र विभाषा है। उनमें से सर्वप्रथम प्ररूपणा विभाषा का पहले अनुगम करना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। जैसे हमने चढ़ने वाले की भी पहले पूरी प्ररूपणा देखी, अब यहाँ चौदहवीं पुस्तक में आकर फिर गाथा सूत्रों की बात देखी। आप परुणा विहासा ताव पच्छा सुप्त विहासा, यहाँ सर्वप्रथम प्ररूपणा विभाषा करके पश्चात सूत्र विभाषा करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्ररूपणा विभाषा जाननी चाहिए, उसकी विभाषा करने पर सूत्र विभाषा जानने के लिए सरल है, क्योंकि हमने पहले वो सारा उपशम का कार्य देखा था तभी जाके यहाँ पर ये बात सरल हो गई। इसलिए बाद में सूत्र विभाषा करनी चाहिए, यह गहन यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वो ग के बदले यह करो। इसलिए सर्वप्रथम प्ररूपणा विभाषा प्रकृत है, इस बात का कथन करने वाला आगे का सूत्र आया है। परुणा विभाषा प्ररूपणा विभाषा प्रकृत है, प्रकृत है ने भी वर्तमान में उसको अभी बता रहे, यह सूत्र सुगम है। तम जहा वह जैसे, यह सूत्र भी सुगम है। सुगम समझते ना, समझने में सरल। दुविहो परिवादो भवक्षयेन च उपशामनक्षयेन च, भवक्षय और उपशामनाक्षय से क्षय के भेद से प्रतिपात दो प्रकार के। प्रतिपात होना यानी गिरना। अब ग्यारहवें गुणस्थान तक पहुंच गए हैं, तो वहां वो ग्यारहवां गुणस्थान से नीचे गिरने का कार्य दो प्रकार से होता है। एक तो मर गया तो जाएंगे डायरेक्ट चौथे में, और वो उपशम का काल एक अंतर्मुख पूरा हुआ तो क्रम से आएंगे नीचे दसवें नौवें आठवें सातवें छठे में। वह बह हुआ है, वह प्रतिपात नियम से दो प्रकार का है, भवक्षय निमित्तक और उपशामना क्षय निमित्तक, जिसको काल क्षय भी कहते हैं। परंतु कौन सा काल? उपशमना का काल, क्योंकि उपशामना फार एवर नहीं हो सकती, वो तो लिमिटेड अंतर्मुहूर्त तक ही हो सकती। प्रकृत में जो उपशम श्रेणी के शिखर पर आरूढ़ है, उपशम श्रेणी का शिखर यानी ग्यारहवां गुणस्थान, और जिसकी वही वही यानी वहां ही के ऊपर बिंदी है ना, देखो तेजो आपके लिए बता रही है, ऑर्डिनरी वही कहते हैं ना, यहाँ बिंदी है, यदि बिंदी नहीं होती तो उसका अर्थ क्या होता? वही यानी वह ही, यानी जो आदमी ले गया है वही लाएगा वापस, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वही का अर्थ वही सेम पर्सन। और यहाँ क्या है? बिंदी है। बम्बई या हिंदी में वो आदमी यहाँ वही 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 पर वहाँ ही
उसी जगह पे
उसी जगह हम कहते हैं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो वो वही तो जिसकी वही आयु समाप्त हो गई है उसके कालगत होकर, कालगत का अर्थ होता है मरण होने पर कषायों में गिरने का नाम भवक्षय निमित्तक प्रतिपात है। किसमें गिरा? कषायों में। कहाँ आरूढ़ थे? उपशम श्रेणी के शिखर पर, और वहाँ से कषायों में गिरे चौथे गुण स्थान
में से।
हमें तो लगता है ना देव में गए ना, अच्छा हुआ ना, तो कहते कषाय में गिर गया। हाँ हाँ, कषाय की अग्नि में
उसके ज्ञान का पूर्ण विषय
बिल्कुल। अरे दुख रूप नहीं होगा वह, कितनी शांति, और यहाँ कैसी भट्टी जल रही होगी। चौथे गुण स्थान में नहीं नहीं अच्छा
यहाँ से बाहर निकले और चालू हो जाए
और वो ऑफिस में कितनी शांति 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 लगती है कालगत होकर मरकर कषायों में गिरने का नाम भवक्षय निमित्तक प्रतिपात है। लोगों को तैयारी, वाह अच्छा हुआ फल मिला, क्या फल मिला? देव में गया। अरे देव में काय का गया, तो कषाय में गिर गया। ऐसा भी होता है उपशम श्रेणी में ग्यारहवें में मरने वाले सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए, तो अच्छा कि नहीं अच्छा बोलो भाई।
तो
आते से सागर तक वो बट्टी अभी कैद हो गई, वहां पर छूटने का कोई मार्ग रास्ता नहीं है वहां पर। यहाँ पूर्ण वितराग अवस्था की। और जो आयु के रहने पर भी उपशामक काल के क्षय होने से कषायों में गिरता है, अभी वो क्रम क्रम से आएगा, फिर भी उपशामक का काल क्षय होने से कषायों में गिरता है, वह उपशामक क्षय निमित्तक प्रतिपात है। गिरना कहा? तो कहाँ गिरना होता है? तो अकषाय रूप से अभी कषाय में गिर गया। उनमें से स्तोक वक्तव्य से संबंध रखने वाले, यानी जिसका कथन अल्प थोड़े शब्दों में हो सकता है, वक्तव्य ने कहने योग्य कथन, ऐसे संबंध रखने वाले भवक्षय निमित्तक प्रतिपात की सर्वप्रथम संक्षेप से प्ररूपणा करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। वो भवक्षय से जो कुछ चौथे में गिरना होता है उसका कथन अल्प है, और उसको भी संक्षेप में कह रहे हैं। और जो वहाँ मनुष्य भव चालू रहा, और जब ग्यारहवें में से क्रम से दसवें, नौवें, आठवें, सत्रहवें में क्या क्या बातें हुई, उपशम होने में जो प्रोसेस हुए थे, फिर दोबारा नीचे आते समय क्या, वो तो लंबा प्रोसेस है, उसका कथन विस्तार से है। इसलिए जो छोटा है वो पहले निपटा लेते जल्दी। आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। अभी आगे का सूत्र पढ़ेंगे, यहाँ पर कल ही पढ़ेंगे क्या? एक एक सूत्र पढ़ेंगे। भवक्षयेन पदिदस्य सव्वाणि कर्णानि एक समयेन उद्घाटितानि। भवक्षय से गिरे हुए जीव के सब कर्ण एक समय में उद्घाटित हो जाते हैं। ये सब निधति निकाचित आदि सब क्रम से एक 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 कर्ण
अनुपमित हो
गए, सब इन्हें नष्ट हुए थे ना, अब सब उद्घाटित हो गए। अब इस सूत्र का अर्थ कर देखें। जावाणी के ज्ञान से सुने लो कालो सो
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजनम नमो लोहे सभ्यतावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजनम नमो लोहे सभ्यतावणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वजनम नमो लोहे सभ्यतावणम।